वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं ज़हरा ज़ैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह कसस की आयत क्रमांक 22 और 23 की तिलावत सुने।
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير।
और जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो कहा, आशा है कि मेरा पालनहार सीधे रास्ते की ओर मेरा मार्गदर्शन करेगा। और जब मूसा मदियन के पानी के कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने चौपायों को पानी पिलाते लोगों के एक गुट को देखा और उन लोगों से हटकर एक और दो स्त्रियों को पाया जो अपने जानवरों को रोक रही थीं। उन्होंने पूछा, तुम्हारा अलग खड़े होने से क्या तात्पर्य है? उन्होंने उत्तर दिया, हम उस समय तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपने जानवर निकालना ले जाएं, और हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि हमारे बाप बहुत ही बूढ़े हैं।
इससे पहले कहा गया कि फिरौन के महल में रहने वाले हिस्कील नामक एक व्यक्ति ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सूचित किया कि फिरौन और उसके लोगों ने आपकी हत्या का फैसला किया है, अतः आप यथाशीघ्र शहर से बाहर निकल जाइए। ये आयतें कहती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वे फिरौन के अधीन मिस्र से निकल जाएंगे और वर्तमान सीरिया के दक्षिण में स्थित मदियन की ओर चले जाएंगे जो फिरौन के शासन से बाहर था। ये क्षेत्र इस समय इराक में है। अलबत्ता इस यात्रा में भी कई खतरे थे, जैसे रास्ता भटक जाना या फिरौन के सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो जाना। इसीलिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो उन्हें सीधा मार्ग दिखाए।
आगे चलकर आयतें कहती हैं कि मदियन नगर में प्रवेश से पहले ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेड़ों के रेवड़ दिखाई दिए जो एक कुएं के किनारे खड़े थे और चरवाहे पशुओं को पानी पिला रहे थे। स्वाभाविक था कि थके हुए हज़रत मूसा भी कुएं के पास जाते ताकि पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं और चेहरे और हाथ पैर पर जमी हुई धूल को साफ करें। लेकिन कुएं के पास पहुँचते ही उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया।
उन्होंने देखा कि दो युवतियां अन्य चरवाहों की तरह अपनी भेड़ों का गल्ला लेकर आई थीं और उन्हें पानी पिलाना चाहती थीं, लेकिन वे अलग हटकर खड़ी हुई थीं और ध्यान रखे हुए थीं कि उनकी भेड़ें दूसरों के गल्ले में न चली जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे उनसे पूछा कि वे कुएं पर क्यों आई हैं और मर्दों से हटकर क्यों खड़ी हुई हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और हम दोनों बहनें अपनी भेड़ों को चराने के लिए विवश हैं, लेकिन चूंकि हम नहीं चाहते कि पुरुषों के साथ ही अपनी भेड़ों को पानी पिलाएं, इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे अपनी भेड़ों को पानी पिलाकर चले जाएं, उसके बाद हम कुएं पर जाकर अपनी भेड़ों को पानी पिलाएंगे।
इन आयतों से हमने सीखा कि अपने घर बार और शहर से पलायन के लिए तैयार रहना बड़े सुधारकों के कार्यक्रमों में से एक है ताकि भविष्य की कठिनाइयों और कड़ी परिस्थितियों के लिए तैयार हो सकें।
कदम उठाने के बाद ही दुआ व प्रार्थना सार्थक होती है। प्रयास करने और कदम उठाने के बजाय दुआ करने का कोई लाभ नहीं है।
महिलाओं व पुरुषों के बीच की सीमा का पालन करना और कार्यस्थल पर उनका एक दूसरे से अधिक मेल जोल से दूर रहना एक मान्यता है, जैसा कि उन दो लड़कियों ने जो ईश्वरीय पैगम्बर हज़रत शुएब की बेटियाँ थीं मर्दों की भीड़ में अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिलाया और इस बात की प्रतीक्षा में रहीं कि पुरुष चले जाएँ तो वे अपनी भेड़ों को पानी पिलाएँ।
आवश्यकता होने पर ईश्वरीय पैगंबर की बेटियां चरवाहे का काम कर सकती हैं, लेकिन कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकती और न भीख मांग सकती हैं।
आइए अब सूरह कसस की आयत क्रमांक 24 और 25 की तिलावत सुने।
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
तो मूसा ने उन दोनों के रेवड़ को पानी पिला दिया, फिर छाया की ओर पलट गए और कहा, हे मेरे पालनहार, मुझे उस भलाई की जो तू मेरी ओर भेज दे आवश्यकता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों में से एक जो शर्माते हुए चल रही थी उनके पास आई। उसने कहा, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए भेड़ों को जो पानी पिलाया है उसका बदला आपको दें। तो जब वे उनके अर्थात शुएब के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल न डरो कि तुम अत्याचारी जाति के लोगों से छुटकारा पा गए हो।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो स्वयं ही फिरौन व उसके लोगों के भय से मिस्र छोड़कर मदियन की ओर आए थे और बहुत अधिक थके हुए थे, अपनी समस्याओं को भूलकर उन दो महिलाओं की मदद के लिए उठ खड़े हुए और कुएं से पानी निकालकर उनके रेवड़ को पानी पिलाने लगे। जब वे सभी भेड़ों को पानी पिला चुके तो उनसे कोई मेहनताना मांगे बिना ही एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। वे अत्यधिक भूखे थे और खाना खोज रहे थे, लेकिन वे उस नगर में अजनबी थे और किसी को नहीं पहचानते थे कि उसके घर चले जाएं या खाने का बंदोबस्त कर लें। इसीलिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो जैसे उचित समझे उनके खाने और ठहरने की समस्या को दूर करे।
दूसरी ओर हज़रत शुएब की बेटियां आम दिनों की तुलना में थोड़ा जल्दी घर पहुंच गईं। उनके पिता ने पूछा, क्या तुमने भेड़ों को पानी नहीं पिलाया कि इतनी जल्दी लौट आईं? बेटियों ने हज़रत मूसा द्वारा सहायता करने की घटना बयान कर दी। हज़रत शुएब ने कहा कि उस व्यक्ति के पास जाओ और उसे घर आने का निमंत्रण दो ताकि उचित ढंग से उसकी मदद का बदला दिया जाए।
उन दोनों में से एक लड़की शर्म और लज्जा के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि मेरे पिता ने आपको घर बुलाया है ताकि आपने हमारे लिए जो कष्ट उठाया है उसका बदला दिया जा सके। हज़रत मूसा ने उस लड़की की बात और व्यवहार से ये समझ लिया कि वो किसी पवित्र व शरीफ घराने से संबंधित है और उसका पिता कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है जो उनके कष्ट का बदला देना चाहता है। इसीलिए उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जो कुछ अनुमान लगाया था उसे वास्तविक रूप में देख लिया।
इस प्रकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईश्वरीय पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और उन्होंने अपने जीवन की घटनाएं आरंभ से लेकर अंत तक उन्हें सुना डालीं और बताया कि वे किस लिए मदियन आए हैं। सारी बातें सुनने के बाद हज़रत शुएब ने कहा कि ईश्वर ने तुम्हें अत्याचारियों से मुक्ति दे दी है और तुम जब तक चाहो हमारे अतिथि बनकर रह सकते हो।
इन आयतों से हमने सीखा कि अपनी कठिनाइयों के समय लोगों की समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
अपनी समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो उस प्रकार उसका साधन उपलब्ध कराए जिसमें हमारी भलाई हो।
पैगंबरों के मत में समाज में महिलाओं की उपस्थिति में कोई रुकावट नहीं है, अलबत्ता इसकी शर्त यह है कि ये उपस्थिति पूरी पवित्रता के साथ हो और महिला व पुरुष की सीमाओं का पालन किया जाए।
दूसरों की सेवाओं का मूल्य समझना चाहिए और उचित ढंग से उनका बदला देना चाहिए।